भारत के अरुणाचल प्रदेश में 7 महीने पहले लगे राष्ट्रपति शासन को हटाकर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वहां कांग्रेस की सरकार की पुनर्स्थापना कर दी है। इसी पर बात करने और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन सर, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं और ये जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन्होंने घड़ी की सुई को पीछे कर दिया है, कितना सही है ये?
देखिए, मैं जो इस पूरे मसले पर मुझे जो लगता है कि जो सबसे गंभीर मसला है ये कि ठीक है, आज न्यायपालिका ने देश की सर्वोच्च अदालत में कह दिया कि हम घड़ी की सुइयों को पीछे ले जाएंगे, लेकिन जो सबसे खतरनाक एक प्रवृत्ति उभरी है और जो देखने को मिल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, वो किसी भी तरह से सत्ता को अपने पक्ष में रखने के लिए, और वो किस हद तक जा रहे हैं इसका अंदाजा पहले हमें उत्तराखंड में लगा और अभी उसका अंदाजा अरुणाचल प्रदेश में लग रहा है। हालांकि इस बात पर मुझे संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि हम घड़ी की सुइयों को पीछे ले जा सकते हैं, अब उसमें दो तरह के सवाल खड़े होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जो लॉ के एक्सपर्ट हैं, उनकी अपनी राय होगी और वो बहस लगातार चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या घड़ी की सुइयां जब पीछे जाएंगी तो वो जो 30 विधायक जिन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं जताया, जिन्होंने एक तरह से कहें कि जो तुकी की सरकार थी उस पर पूरी तरह से जो भरोसा था उसको खारिज कर दिया, और वो मुख्यमंत्री के साथ जो 30 विधायक हैं जो कलिखो पुल के साथ, क्या उनको भी वो पीछे ले जा पाएंगे? क्या जब एक बार फिर से हम फ्लोर पर जा रहे होंगे तो फ्लोर ऑफ द हाउस जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा या फिर कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, दोनों ही स्थितियों में क्या उत्तराखंड की व्यवस्था फिर से सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा? यानी दो दावेदार सीधे सीधे हैं और उन दावेदारों के बीच में भाजपा और कांग्रेस के बीच में हाथ उठाकर देखा जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, या दूसरी चीज ये होगी कि कहा जाएगा चूंकि हमने घड़ी की सुइयां पीछे की हैं तो नवम तुकी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट होगा। अब फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो क्या फिर से स्पीकर वही खेल कर सकते हैं? क्योंकि बार बार जब ये बात होती है कि पार्टियां सत्ता के लिए कुछ भी कर रही हैं और पिछले दो फैसलों से बार बार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उन्होंने जो किया है वो पूरी तरह से सत्ता की रेस है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से गोविंद कुंजवाल ने स्पीकर के तौर पर फैसले लिए उत्तराखंड में, और अब जो यहाँ भी आशंका लगती है कि क्या उन 30 विधायकों को अयोग्य कर दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि अगर 7 महीने पहले की घड़ी की सुइयां होंगी तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि फ्लोर टेस्ट नवम तुकी के लिए, और फ्लोर टेस्ट होने का मतलब सीधा सीधा होता है कि आप पक्ष या विपक्ष में वोट करते हैं। दोनों पार्टियों के चीफ व्हिप अपना अपना व्हिप जारी करेंगे और अगर वो व्हिप जारी हो गया तो उसके बाद आप उस पार्टी के खिलाफ मतदान नहीं कर सकते, और करते हैं तो आपकी सदस्यता जाएगी। तो क्या ये होने वाला है कि वो विधायक विपक्ष में मतदान करेंगे, सरकार फिर से गिरेगी और सदस्यता इनकी जाएगी? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वहां फिर से चुनाव होगा और नई एक तरह की कहें कि राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें ये लेकर फिर से जनता के बीच जाना होगा, तो सरकार फिर से चुनने का वक्त आ गया। या दूसरी ये स्थिति हो सकती है कि इधर के कलिखो पुल और नवम तुकी उनके बीच में फ्लोर टेस्ट हो और दोनों पक्ष विपक्ष हो और उसमें जो हाथ उठाकर या जिस भी तरह से स्पीकर तय करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही होगा कि उस लिहाज से तय किया और आपने तय किया, तो घड़ी की सुइयां पीछे तो सुप्रीम कोर्ट ले गया है, लेकिन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और खास करके दोनों ही पार्टियां सत्ता को लेकर इस तरह से मतलब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, जो शायद जनता के दिए हुए फैसले का सम्मान तो दोनों ही पार्टियां नहीं कर रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी जो फैसले आ रहे हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि आप समय लेते हैं। हालांकि इसकी झलक अरुणाचल के मामले की झलक दिसंबर में लग गई थी जब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि राज्यपाल जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं
जी,
और सबसे बड़ा सवाल बार बार उठाया जाता है कि राज्यपाल की भूमिका कहाँ तक हो, क्या वो राजनीतिक पार्टी का होता है तो उसकी भूमिका तय होनी चाहिए या उसकी भूमिका ऐसे ही राजनीतिक मसलों पर बदलती रहेगी ये तय है, तो इस तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। और हो सकता है, कई बार होता है, मुझे निजी तौर पर लगता है कि जैसे जब इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होती है या ट्रांजिशन पीरियड होता है तो कई बार बेहतर स्थिति बनती है और शायद देश की जनता को भी थोड़ा सहूलियत होती है कि पार्टियों का चरित्र समझा जा सके।
सर, अंत में बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, राज्यपाल पे सवाल उठ रहे हैं, सरकार यानी मुख्यमंत्री पे सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, यहाँ पर कहीं भी इस सब की वजह जो है वो है स्पीकर ऑफ द हाउस, उस पर सवाल नहीं उठ रहे और उसकी भूमिका को डिफाइन करने के लिए कोशिश नहीं हो रही, उस पर आप क्या कहेंगे?
क्योंकि मुझे लगता है कम से कम जो संविधान के विशेषज्ञ लोग हैं और जो वो लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जब आप बोल रहे हैं तो देश इस उम्मीद से सुनता है कि आप सत्ता से या किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर हैं, और मुझे बड़ी निराशा हो रही कि कम से कम इन मामलों में जहां भी स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठे हों, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो है वो भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं पार्टी लाइन पे ही जा रहे हैं। ये इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस तरह से तो जब भी इस तरह सरकारों के बनने या बिगड़ने का होगा, या तो एक अमेंडमेंट आए और बाकायदा संवैधानिक संशोधन हो कि कोई भी सरकार 5 साल के पहले गिर नहीं सकती है, यानी वो सरकार कैसे भी काम कर रही हो फिर उस पार्टी के मुखिया के ऊपर है कि वो अपने मुख्यमंत्री बदलता रहे लेकिन सरकार नहीं गिरेगी। और अगर सरकारें गिरेंगी, यानी जो लोग विधायक चुनकर आए हैं अगर उनकी मर्जी से सरकारें गिरेंगी, तो उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2/3 वाला एक बहुत शानदार फॉर्मूला पेश किया था। अब अगर इतने लोग यानी 45 कांग्रेस के विधायकों में से 30 लोग खिलाफ में हैं और फिर भी अगर वो सरकार कलिखो पुल की नहीं बनती है, तो इस पर भी एक बार मुझे लगता है कि एक बड़ी बहस की और उस पर कुछ फैसले की जरूरत है कि आखिर इस तरह के डिसेंट को लोकतंत्र में किस तरह से देखा जाएगा। इसे हम हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे, इसे हम विपक्ष की सत्ता को लेने की कोशिश कहेंगे, या सचमुच विधायकों में जो आक्रोश है जो चुनकर आए हुए हैं और 45 में से 30 विधायक अगर अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब कि ये उन लोगों की एक स्वाभाविक इच्छा है और उसका सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए था, मुझे निजी तौर पर लगता है।
हर्षवर्धन जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।